स्कूल का क्या बना? करदम शाह डेरे पर आया तो पूछने लगा। साईं चौधरी कहता है जमीन उसकी है और वो कोई स्कूल वहां पर तामीर नहीं होने देगा। हमने उसे बताने की बहुत कोशिश की कि उसका बाप ये जमीन शाह साईं को बेच चुका है, लेकिन वो मानते ही नहीं। यहाँ तक के पेपर तक चुरा लिए हैं उसने। न जाने क्या होगा, शायद स्कूल तामीर ना हो सके। नहीं, ये स्कूल जरूर तामीर होगा। ये दादा साईं का ख्वाब है और ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। यहाँ बच्चियों की तालीम के लिए स्कूल जरूर तामीर होगा और कोई चौधरी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। चौधरी के बाप ने खुद ये जमीन बेची है। चौधरी ये सब करके ठीक नहीं कर रहा, बहुत बुरा अंजाम होगा सबका। करदम को चौधरी की बेईमानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल घर में शादी के फंक्शन से चल रहे थे, इसीलिए वो किसी किस्म का कोई इश्यू अफोर्ड नहीं कर सकता था। जहाँ तक पेपर्स की बात है तो असल कागजात हमारे पास हैं, जिसमें उसके अबाओ अजदाद के साइन हैं। कुछ तो बोलो, खामोश क्यों हो? मुकदम साईं जो कब से उससे बातें करते हुए गाड़ी चला रहा था, उसके खामोश बैठने पर बोला। बोल तो रही हूँ, हुरिया ने नजरें झुका कर कहा। तुम बोल नहीं रही हो, मुनमना रही हो। यार बातें करो मेरे साथ, ये सब कुछ क्यों किया है मैंने? तुमसे बातें करने के लिए, तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए, और तुम हो के मुंह बनाकर बैठी हो, मुकदम ने उसके हसीन चेहरे को देखते हुए कहा। मैं क्या बात करूं, हुरिया कंफ्यूज हुई। मेरी तारीफ ही कर दो, मुकदम ने जल्दी से जवाब दिया। क्या तारीफ करूं, हुरिया सीरियस अंदाज में बोली। कुछ भी तारीफ कर दो, अपनी सोच ही बता दो। यही बोल दो मुकदम साईं, आप इतने हैंडसम हैं कि पूरे गांव की लड़कियां मरती हैं आप पर, और आपका दिल मुझ पर आ गया। आप हैं जो मुझसे मोहब्बत कर बैठे हैं, मुझे दीवानों की तरह चाहने लगे हैं, और एक मैं हूँ जो आपको घास ही नहीं डालती, मुकदम उसके चेहरे पर नजरें जमाए बोल रहा था। मुकदम साईं आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती, हुरिया ने जल्दी से जवाब दिया। मतलब मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता, मुकदम सदमे से उसकी तरफ देखा था। नहीं आप लगते हैं, आगे जो आपने कहा। अच्छा तो मैं हैंडसम हूँ, मुकदम ने उसकी नजरों को देखते हुए कहा। हुरिया शर्मा कर बाहर देखने लगी, उस शख्स की बातों का मुकाबला करना उसके बस में नहीं था। देखा, अब मुंह फेर लिया। ठीक है तो कहता हूँ कि तुम घास नहीं डालती मुझे, मुकदम ने मुंह बनाकर कहा। पता नहीं क्या सोचते रहते हैं आप, मैंने कभी नहीं सोचा आपके बारे में ऐसा। तो फिर कब सोचोगी जाने मन, मुकदम शोक हुआ। प्लीज अब इस तरह की बातें ना करें, उसने अपने सुर्ख कालों को दुपट्टे से छुपाते हुए कहा। उफ यार कितना शर्माती हो तुम, अच्छा नहीं करता मैं इस किस्म की बातें। ये सारी बातें हम शादी के बाद करेंगे, फिर तो कोई एतराज नहीं होगा जाने मन, मुकदम ने फिर से छेड़ते हुए कहा, जबकि वो तो बस शर्माए जा रही थी। फिर मुकदम ने उसे खूब शॉपिंग करवाई। मैं चाहता हूँ तुम अपने आप को बस मेरे नाम कर दो, मैं जैसे चाहूँ तुम्हें सजाऊँ, जैसे चाहे तुमसे प्यार करूँ, बस मेरी बन जाओ, वो जज्बात से भरपूर लहजे में बोला। जबकि हुरिया उसकी कुर्बत से घबराती जल्द से जल्द वापस घर जाना चाहती थी, लेकिन मुकदम ही अपने नाम का एक था, उसने वापस आते आते रात अंधेरा ही कर दिया। सच बताओ तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रही हो, और ये बताओ कि तुम दोनों क्यों नहीं चाहती मुकदम शाह और करदम शाह का निकाह हो, चौधरी इन दोनों के सामने बैठा दिलचस्पी से उनकी खूबसूरती को देखते हुए पूछ रहा था। क्योंकि मुकदम शाह मेरा मंगेतर है और करदम शाह उसका, लेकिन वो बुड्ढा करदम शाह का निकाह मेरी बहन के साथ और मुकदम शाह का निकाह उस गवार के साथ कर रहा है, सवेरा ने इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा करते हुए कहा। इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, बताओ तुम हमारी मदद करोगे या नहीं, सवेरा ने उसे देखते हुए कहा। खूबसूरत लोगों की चौधरी मदद ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और आशिक तो मुझे बहुत ही पसंद है। तुम लोग बस ये चाहती हो ना कि निकाह से पहले मुकदम शाह और करदम शाह हवेली से कहीं चले जाएं, ताकि ऐन वक्त पर उनका निकाह ना हो, और तुम लोग ये भी चाहती हो कि कोई बड़ा मसला बने ताकि निकाह कुछ दिन के लिए टल जाए। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं तुम दोनों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं कल ही स्कूल वाली जमीन पर आग लगा दूंगा, वो भी निकाह से कुछ देर पहले। ये खबर सुनकर वो दोनों आएंगे और निकाह नहीं होगा। उस जमीन को बचाने के लिए उन लोगों के कुछ खास लोग जख्मी हो जाएंगे, जिससे उन दोनों का निकाह टल जाएगा। फिर तुम लोग सोच लो तुम दोनों को आगे क्या करना है। मैं सिर्फ वक्ती निकाह रोक सकता हूँ, चौधरी ने बात करते हुए उनके चेहरे की रौनक देखी थी। थैंक यू सो मच, हमें इससे ज्यादा तुम्हारी और मदद चाहिए भी नहीं, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। लेकिन फिलहाल निकाह रोक दो, सवेरा ने उसे देखते हुए कहा और फिर तायशा को देखकर मुस्कुराई, वो जो उसके साथ आने को तैयार ही ना थी। लेकिन जब उसने ये कहा कि करदम शाह हमेशा के लिए उसका हो सकता है तो वो उसके साथ आने पर मजबूर हो गई। लेकिन करदम के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर वो खुश नहीं थी, वो तो करदम शाह की दीवानी थी, उसे हर हालत में पाना चाहती थी, वो उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी, उसे बस करदम शाह का साथ चाहिए था। उसे लग रहा था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसने जिंदगी के हर मकाम पर करदम शाह को टूट कर चाहा था, वो कितनी आसानी से उसे छोड़कर किसी दूसरी से निकाह करने लगा। बेशक मोहब्बत अंती होती है, वो सही गलत की पहचान खत्म कर देती है और तायशा की पहचान खत्म हो चुकी थी। हुरिया बहुत सारी रस्में अदा कर चुकी थी और न जाने कितने ही रस्में अदा करनी थी। करदम की शादी में एक बहन के रूप में वो सबसे आगे थी। आज इन दोनों का निकाह था। तायशा और सवेरा दोनों को इस शादी में कोई दिलचस्पी न थी, वो दोनों अपने कमरे में घुसी हुई थी, बल्कि एक ही कमरे में दोनों घुसी हुई थी। धड़कन को अपनी बहन पर बहुत दुख हो रहा था, वो अपनी ही बहन की शादी में शिरकत नहीं कर रही थी, अगर हुरिया यहाँ ना होती तो क्या होता। ऐसे वक्त में बहनें और सहेलियां ही तो होती हैं जिसके साथ एक लड़की अपने जज्बात का इजहार कर सकती है, लेकिन ना तो उसकी बहन को उसमें दिलचस्पी थी और ना ही वो उसके जज्बात जानना चाहती थी। लेकिन हुरिया ने अपनी शादी की परवाह किए बगैर धड़कन का ख्याल रखा। धड़कन, उम्र में तुम मुझसे छोटी हो लेकिन फिर भी मेरी जिठानी बनने जा रही हो, या मैं तुम्हें अपनी भाभी कहूँ, हुरिया उसका दुपट्टा सेट करते हुए पूछने लगी। कुछ भी कह लें क्या फर्क पड़ता है, धड़कन ने भी दिली से कहा। उसी वक्त उनके कमरे के करीब से निकलते हुए करदम के कदमों में ही रुक गए। ये तो वो जानता था कि वो उसे पसंद नहीं करती और इस शादी के लिए भी वो सिर्फ और सिर्फ दादा साईं के कहने के पर तैयार हुई, लेकिन वो उसे इतनी बददिल थी कि उसे इस शादी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। क्या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, हुरिया उसके करीब बैठकर पूछने लगी। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं करदम लाला करदम साईं के बारे में बात कर रही हूँ। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं, हुरिया के साथ साथ दरवाजे पर खड़ा करदम भी उसकी बात को नहीं समझा था। अरे मेरा मतलब है कि करदम साईं ये शादी सिर्फ दादो साईं के कहने पर कर रहे हैं, वरना वो मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करते। कभी कभी सोचती हूँ मुकदम लाला कितने रोमांटिक है, वो न सिर्फ आपके लिए मेहंदी के ड्रेस लाए बल्कि आपको अपने साथ लेकर गए और शॉपिंग करवाई, लेकिन करदम साईं ने मुझे देखना तक गवारा न किया। आपने देखा जब से हमारी मंगनी हुई है उन्होंने एक बार भी मुझसे बात नहीं की, यहाँ तक कि ये भी नहीं पूछा कि तुम्हें शॉपिंग पे जाना है, बल्कि शॉपिंग को छोड़ो उन्होंने तो मुझे बात भी नहीं करवाया। सुबह मैं कमरे से बाहर निकली तो वो मुझे देखे बिना बाहर चले गए। ठीक है, पहले हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, लेकिन अब ये, उसने हाथ की उंगली की तरफ इशारा किया, ये पहनाई है उन्होंने मुझे। मैं मंगेतर हूँ उनकी, बात तो कर सकते हैं लेकिन क्यों करेंगे बात, वो मुकदम लाला थोड़ी हैं, वो करदम साईं हैं, दुनिया के सबसे अनरोमांटिक और बोरिंग पर्सन, वो मासूमियत से कहती अपनी बात पर उदासी से बैठ गई। हुरिया ने गहरा सांस लिया, जो वो सोच रही थी ऐसी कोई बात नहीं थी। हर लड़की की तरह धड़कन भी अपने मंगेतर से कुछ उम्मीद रखती थी, जबकि दरवाजे पे खड़ा करदम उसकी मुकम्मल बात सुनने के बाद अपना माथा खुजा रहा था। इतनी बेवकूफ लड़की है ये, इस तरह की बातें खुलेआम कौन करता है भला, अगर करनी थी शॉपिंग तो बता देती, ले जाता साथ, करदम ने सोचते हुए कदम आगे की तरफ बढ़ाए। कुछ ज्यादा ही अनरोमांटिक और बोरिंग पर्सन समझाए ना मुझे, तुम्हें मैं बताऊंगा रोमांस किसे कहते हैं। निकाह का वक्त हो चुका था, इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे थे, दादा साईं ने यह वक्त मुकरर किया था निकाह के लिए। मौलवी साहब आ चुके थे, मुकद्दम और करदम दादा साईं के दाएं और बाएं बैठे हुए थे। सवेरा और तायशा बेफिक्र थी क्योंकि वो जानती थी कि ये निकाह आज की तारीख में मुमकिन नहीं है और उसके बाद वो ये निकाह नहीं होने देगी, ये वो सोच चुकी थी। सवेरा ने एक आखिरी बार चौधरी को फोन करके कंफर्म करवाया और चौधरी ने उसे बेफिक्र रहने के लिए कहा। मौलवी साहब ने निकाह शुरू कर दिया था जबकि अभी तक करदम या मुकदम का फोन नहीं बजा था, जिसकी वजह से सवेरा और तायशा दोनों ही परेशान थी। सवेरा दीदा, निकाह तो शुरू हो गया है लेकिन अभी तक कोई फोन नहीं आया, चौधरी अभी तक फोन क्यों नहीं कर रहा, तायशा ने बेचैनी से पूछा। पता नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ, वो मुसलसल चौधरी को फोन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन फोन बंद जा रहा था। चौधरी साहब, आपका फोन कब से बज रहा है, आप उठा क्यों नहीं रही? उसके एक आदमी ने पूछा। क्योंकि मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैंने उन बेवकूफ लड़कियों के सामने ये तो कह दिया कि मैं उनकी मदद करूंगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि मैं उनके खानदान का दुश्मन हूँ और उनको मेरी वजह से कोई खुशी नसीब नहीं होने दूंगा। वो बेवकूफ लड़कियां चाहती हैं कि मैं इस वक्त, जबकि मैं बिल्कुल आजाद हूँ, मुकदम शाह और करदम शाह से बगावत करूँ ताकि वो मुझे गाँव के चौड़ाए पर खड़ा करके गोली मार दें। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ दोनों की शादी हो जाए ताकि कुछ दिन के लिए इन दोनों का ध्यान बटे और वो जमीन मेरी हो जाए। वो तो लड़कियां हसीन थी तो मैंने दिल रखने के लिए कह दिया कि मैं मदद करूंगा, चौधरी ने कहका लगाते हुए उन दोनों की बेवकूफी का मजाक उड़ाया। निकाह की रस्म मुकम्मल हो चुकी थी। आज की तारीख में मुकदम शाह हमेशा हमेशा के लिए हुरिया को पा गया तो धड़कन हमेशा हमेशा के लिए करदम के नाम कर दी गई। निकाह के बाद दोनों जोड़ियों को एक साथ बिठाया गया। धड़कन की हालत आज भी कुछ दिन पहले जैसी ही थी, लेकिन आज रिश्ता बदल चुका था, जबकि मुकदम की खुशी का अंदाजा उसके चेहरे से भी साफ लगाया जा सकता था। सुनो, तुम तो नहीं आई मुझसे मिलने के लिए, लेकिन आज रात मैं आऊंगा, मुकदम शाह ने सामने देखते हुए हुरिया को सरगोशी नुमा आवाज में कहा, जिसके बाद हुरिया के दिल की धड़कन किसी गाड़ी की तरह भागी थी, जबकि दूसरी तरफ से इस तरह से कांपते देखकर नरमी से कहा था, डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, रिलैक्स हो जाओ। वो पहली बार उससे इतने नरम लहजे में बात कर रहा था। धड़कन ने जरा नजर उठाकर देखा तो करदम को पहली बार जिंदगी में मुस्कुराते हुए पाया। देखो तो इस तरह से घबराओगी तो सब लोग क्या समझेंगे। आराम से बैठो। वो उसका हाथ में से अपने हाथों में लिए आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ की नरमाहट को महसूस कर रहा था। शाम को मेहंदी की रस्म अदा हो रही थी। ताइशा और सवेरा फोन का इंतजार ही करती रह गई, लेकिन कोई फोन नहीं आया। सवेरा को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल चाहा अभी चौधरी के डेरे पे जाके उसका मुंह तोड़ाए, जबकि ताइशा रोए जा रही थी, जिसने सारी प्लानिंग कर ली थी लेकिन सवेरा की बात सुनकर उसने नुकसान उठाया था। उसने सोचा था कि वो खुदकुशी का ड्रामा करेगी तब करदम उस पर तरस खाकर उससे शादी कर लेगा, लेकिन वो भी अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। उसे रह रहकर सवेरा पे गुस्सा आ रहा था, जिसने उससे कहा था कि जो मैं चाहती हूँ तुम वो करो, तुम्हें करदम शाह मिल जाएगा, लेकिन उसके हिस्से में कुछ ना आया, जिस तरह से सवेरा खाली हाथ थी। ताइशा उस वक्त बैठी रोए जा रही थी जबकि सवेरा उसके आंसुओं से इरिटेट हो चुकी थी। ताइशा, फॉर गॉड सेक रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ सोचना होगा। क्या होगा, क्या करेंगे हम, बताएं मुझे, वो गुस्से से गराते हुए बोली। सवेरा को उसका लहजा बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिलहाल वो जब्त कर गई क्योंकि उसके अलावा उसका साथ देने वाला और कोई नहीं था, और फिलहाल ताइशा की मदद करना उसके लिए बहुत जरूरी था, इसीलिए उसके पास जमीन पर बैठ गई। मेरी बात सुनो ताइशा, धड़कन बहुत डरपोक है, इतनी कि हम जो भी करेंगी वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, मैं उसकी बहन हूँ, उसके साथ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम, मेरा मतलब है, उससे डराओ धमकाओ और कुछ ना सही, वो तुम्हारी धमकी में आकर करदम से तो दूर रह सकती है। हम उन दोनों का रिलेशन नहीं बनने देंगे, करदम बहुत अनापरस्त है, अगर धड़कन ने उसे खुद से करीब आने से रोका तो यकीन करो वो कभी उसे मुंह नहीं लगाएगा, जो लड़के उसके काम ही ना आ सकी वो उसका क्या करेगा, अचार डालेगा, 4 दिन में तलाक देकर फारिग करेगा और फिर तुमसे शादी कर लेगा। सवेरा कितनी आसानी से अपनी ही बहन की तलाक की बात कर रही थी, और उसकी बात पर अमल करने का ताइशा ने पूरा इरादा कर लिया था, जबकि सवेरा को आज ही पता चला था कि अगर हुरिया से मुकदम की शादी ना होती तो सवेरा से भी कभी नहीं हो सकती थी, क्योंकि हुरिया उसकी पसंद है और वो पहले ही उसे रिजेक्ट कर चुका है, लेकिन वो भी फैसला कर चुकी थी, जिस इंसान ने उसे रिजेक्ट किया था वो उसने हासिल करके दम लेगी, लेकिन अगर वो अपनी मोहब्बत का भूत उतारना चाहता है तो सवेरा को कोई एतराज ना था, वो 4 दिन अपनी मोहब्बत के साथ गुजार सकता है। मेहंदी की रस्म अदा हो रही थी, हवेली में शोरों हंगामे थे, दादा साईं बहुत खुश थे, आखिर के दोनों पोतों की शादी थी, अपनी बेटी को अपनी ख्वाहिश पूरी करने देख कर अहमद शाह की आंखें बार बार नम हो रही थी। धड़कन करदम के साथ बैठी बार बार उसका चेहरा देख रही थी। दोपहर में करदम के नरम लहजे ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, आखिर वो भी उसका चेहरा देख रही थी, वो भी मुकदम से कम ना था, मगर मुकदम की बनिस्बत उसके चेहरे पर संजीदगी थी, जबकि मुकदम थोड़ा शोख और हंसमुख था, वह बार बार एक ही बात सोच रही थी, वो और करदम दोनों एक साथ कैसे लगते होंगे। वैसे तो लोगों ने बहुत तारीफ की थी, उसके जहन में खुद से ही ये सवाल पैदा हो रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि उसके सवालों का जवाब देने के लिए करदम शाह उसके साथ आईने के सामने हरगिज खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो अनरोमेंटिक पर्सन है। धड़कन के इस तरह के चौंचले उसे हरगिज पसंद नहीं आएंगे। या अल्लाह, मेरे नसीब में कितना हैंडसम बंदा लिख दिया, तो थोड़ा रोमांटिक भी लिख देते। वो मुंह बसोर कर अल्लाह से शिकायतें कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ हर गुजरते लम्हे के साथ मुकद्दम शाह इस महफिल के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि इसके बाद हुरिया उससे मिलने आने वाली थी और उसे यकीन था कि अब वो हरगिज इनकार नहीं करेगी। हुरिया को मिलने का आने के बाद धमकी भी दे चुका था कि ना आने की सूरत में वो उसके कमरे में आ जाएगा, और उसे यकीन था कि वो कभी उसे अपने कमरे में नहीं आने देगी। लेकिन हाय, ये रस्म जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात 1 बजे तक रस्म चलती रही, गांव की औरतों ने गीत गाए और न जाने कौन कौन सी रस्में अदा की। मुकद्दम तो इस सब से उकता चुका था, लेकिन करदम अपने बाप का दिल रखता था। जिस तरह से उसका बाप गांव वालों से मोहब्बत करता था, बिल्कुल उसी तरह से वो भी गांव वालों से बेपनाह मोहब्बत करता था। गांव की कितनी ही औरतें उसे अपना बेटा ना सिर्फ कहती थी बल्कि मानती भी थी। उनके मसाइल हल करना, उनकी मुश्किलों में उनका साथ देना तो करदम का काम था। यही वजह थी कि गांव वाले मुकद्दम शाह से ज्यादा करदम शाह को पसंद करते थे और उसे कोई अगला सरपंच ही बनाना चाहते थे। लेकिन मुकद्दम को सरपंच बनने में कोई खास इंटरेस्ट ना था, वो तो अपनी जिंदगी बहुत मजे से जी रहा था। मैं पूछता हूँ, ऐसे कैसे मेरी बेटी का निकाह कर दिया? देखो कासिम शाह, तुमने कभी मुझसे मेरी बेटी को मिलने नहीं दिया, कभी उसे मेरी शक्ल नहीं देखने दी, लेकिन उसके निकाह तो मुझसे शामिल कर लेते। मलिक आज बंदूक या तलवार उठाकर नहीं आया था, बल्कि अपनी बेटी के लिए आया था, जिसके निकाह में भी वो शामिल ना हो सका। मलिक की हुरिया के अलावा और कोई औलाद न थी, औलाद होते हुए भी वो बे औलादों जैसी जिंदगी गुजार रहा था। कासिम शाह ने कभी हुरिया को उससे मिलने तक न दिया और आज उसे खबर दिए बगैर ही हुरिया का निकाह कर दिया। जाओ कासिम शाह, मुकद्दम शाह से पूछ लो कि वो अपनी मनकुहा को तुमसे मिलने की इजाजत देता है। मुकद्दम शाह, मलिक ने नाम दोहराया। हाँ, मुकद्दम शाह, वही मुकद्दम शाह जिसके बाप को तुमने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, वही मुकद्दम शाह जिसके ताया को तुमने बेड़ियां डालकर अपनी गाड़ी के पीछे घसीटा था, वही मुकद्दम शाह जिसकी फूफी को तुमने जबरदस्ती अपने निकाह में लिया था, वही मुकद्दम शाह जिसकी दूसरी फूफो को तुमने बेवा किया था, वही मुकद्दम शाह जिसके खानदान को तुमने बर्बाद किया था। अब तुम्हारी बर्बादी की बारी है। मेरा पोता मुकद्दम शाह कभी अपनी बीवी को तुमसे मिलने की इजाजत नहीं देगा। तुम बंदूक या तलवार उठाकर नहीं लाए, वरना हम भी मुकाबला करने के लिए मैदान में जरूर उतरते, लेकिन तुम सवाली बन के आए हो, अपनी बेटी से मुलाकात की भीख मांगने आए हो, लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। बाबा सही गरूर से कहते वहां से जा चुके थे, जबकि मलिक और उसके आदमी दुल्हन की तरह सजी हुई हवेली को देख रहे थे, जिसमें आज उसकी बेटी ब्याई जा रही थी, जिसमें उसे शामिल तक ना किया गया। रस्म खत्म होने के बाद दोनों दुल्हने ने अपने कमरे में जा चुकी थी। हुरिया ने अभी ड्रेस चेंज करने के बारे में सोचा था, जबकि धड़कन अपने दुपट्टे और ज्वेलरी के साथ बुरी तरह से उलझ कर रह गई। हुरिया जो अपनी ज्वेलरी उतारने के बाद उसके लिए वापिस आने वाली थी, पता नहीं कहाँ रह गई। हुरिया दीदा, अब आ जाएं, कहाँ रह गई हैं? खुदा के लिए मुझे बचाएं। ये दुपट्टा नहीं, पूरा पिंजरा है, मैं तो कैद हो गई। वो अपने आप को छुड़वाते ये भी ना देख पाई कि उसके करीब कौन आया, जबकि उसके दुपट्टे से सारी सेफ्टी पिन हटाने के बाद धड़कन उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। दीदा ये भी उतारे, वो गले के हार की तरफ इशारा कर रही थी। करदम शाह ने बहुत गौर से उसका हसीन सरापा देखा था, वो बेपनाह हसीन थी, शायद इससे ज्यादा हसीन वो पहले कभी ना लगी थी। मतलब निकाह के दो बोलों ने अपना असर दिखा दिया था। उसने आहिस्ता से उसके गले का हार निकाला और सामने ड्रेसिंग टेबल पर रखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शीशे पर पड़ी तो धड़कन बौखला कर रह गई। करदम सही आप? उसकी जुबान से अल्फाज अटक अटक कर निकले थे। हाँ मैं, सब लोगों की वजह से ठीक से देख नहीं पाया था तुम्हें, लेकिन मैंने नोट किया है तुमने मुझे काफी गौर से देखा। खैर ये बताओ कि हम दोनों साथ कैसे लगते हैं? वो आईने की तरफ इशारा करते हुए बोली। मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारी हाइट बहुत कम है। खैर वो भी मैं खींच कर लंबा कर लूंगा, करदम ने मुस्कुरा कर कहा तो धड़कन ने उसे घूर कर देखा। मजाक था यार, वो अभी भी मुस्कुरा रहा था। आप मजाक भी करते हैं? धड़कन ने पूछा। अब मैं क्या क्या करता हूँ ये तो तुम्हें कल रात ही पता चलेगा। करदम ने बड़े हक से उसके लबों को अपने अंगूठे से छुआ। हुरिया से क्या कह रही थी तुम? कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ, बोरिंग हूँ, वो उसके मजीद करीब हुआ। मेरा आज यहाँ आने का कोई इरादा ना था, लेकिन फिर सोचा क्यों ना तुम्हें सबूत दे दूँ रोमांटिक होने का। वो उसके होंठों पर झुका और अपने होंठ उसके खूबसूरत नरम लबों पर रख दिए। धड़कन ने पीछे हटने की नाकाम सी कोशिश की, लेकिन उसकी कमर में हाथ डालकर करदम ने उसे अपने मजीद करीब किया। वो उसके चेहरे पर झुका, उसकी खुशबू का अपने सीने में उतारा। वो उसे मुकम्मल बेबस कर चुका था, उसकी पकड़ में वो हिल तक नहीं पा रही थी। कैसा लगा पहला रोमांटिक डोज? करदम ने पीछे हटते हुए पूछा, जबकि वो अपनी फूली हुई सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश में नजरें झुका इधर उधर देख रही थी। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था। मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है, ये तो ट्रेलर था बेबी, फिल्म में कल दिखाऊंगा, तैयार रहना, ये नाजुक मिजाजी नहीं चलेगी, वो उसकी कपकपाहट को देखते हुए बोला। वेलकम टू माई लाइफ, वो उसके माथे को अपने होंठों से छूता बाहर चला गया, जबकि धड़कन ने अपने माथे से पसीना साफ किया और जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद किया। वही कमरे के दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई। अब उसे हुरिया का इंतजार बिल्कुल नहीं था। या अल्लाह, ये तो जरूरत से ज्यादा रोमांटिक है, धड़कन ने अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर कहा, फिर खुद ही शर्मा कर अपने हाथों में चेहरा छुपा गई। मुकद्दम शाह मुसलसल एक घंटे से हुरिया का कमरे में आने का वेट कर रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। हुरिया का ना आना उससे गुस्सा दिला रहा था। अब तक क्यों नहीं आई? वो अब तक तो आ जाना चाहिए था। वो कमरे में चक्कर काटता मुसलसल उसका इंतजार कर रहा था। अब सबर का पैमाना भी लबरेज हो रहा था। हुरिया, अगर आज तुम मेरे कमरे में ना आई तो तुम्हें ये रात बहुत भारी पड़ेगी, वो मुसलसल टहलते हुए बुड़बुड़ा रहा था। तुम्हारे पास ये आखिरी आधा घंटा है हुरिया, अगर तुम इस आधे घंटे में नहीं आई तो फिर मुझे मजबूरन आना पड़ेगा, वो खुद से उसे टाइम दे रहा था। और फिर उसी तरह से टहलते टहलते ये आधा घंटा भी गुजर गया। तुम्हारा वक्त खत्म हुआ हुरिया, और आज की रात अपने शोहर को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ, वो कमरे से निकलते हुए बुड़बुड़ाया था, लेकिन अपने कमरे के कुछ फासले पर सवेरा को देखकर वहीं रुक गया। उस रात उससे टकराने से पहले और बाद में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी, यहाँ तक कि वो तो उसके आने पर भी उससे मिला तक नहीं था। मुकद्दम शाह, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सवेरा उसके करीब आकर कहने लगी। हम सुबह बात करेंगे, वो इग्नोर करता आगे जाने लगा। उसके इस अंदाज पर सवेरा सुलग उठी। कोई इसे इस तरह से इग्नोर करे उसे हरगिज गवारा ना था। मेरी बात जरूरी है, शायद आपको ये बात पता नहीं है, हुरिया किसकी बेटी है? क्या आप जानते हैं कि आपकी शादी जिस लड़की से हुई है उसका बाप ताया साईं का कातिल है? आपको अंदाजा भी है उसके बाप ने क्या क्या नहीं किया इस खानदान के साथ? सवेरा ने दादा साईं और मलिक की बातें सुन ली थी और यही सोचा था कि इस राज के जरिए वो मुकद्दम के दिल में हुरिया के लिए नफरत पैदा करेगी। आपको पता है आज वह शख्स यहाँ भी आया था हुरिया के निकाह में शामिल होने के लिए, लेकिन दादा साईं ने उसे निकाल दिया। क्या आपको पता है? मुझे सब कुछ पता है इस बारे में, सब कुछ जानता हूँ। इस खानदान का कोई भी राज मुझसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन एक बात सवेरा जो तुम्हें भी मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि हुरिया मलिक की बेटी नहीं बल्कि मुकद्दम शाह की बीवी है, और इस घर में उसकी हैसियत वही है जो मुकद्दम शाह की बीवी की है। इसके अलावा वो दादा साईं की सबसे लाडली बेटी की आखिरी निशानी है। मैं समझ सकता हूँ शायद ये जान करके हुरिया मलिक की बेटी है तुम्हें अफसोस हुआ होगा, लेकिन वो सिर्फ हमारे दुश्मन का खून नहीं है सवेरा, वो हमारे घर की बेटी है। मुकद्दम को लगा कि शायद अपने खानदान के कातिल के बारे में सुनकर सवेरा को दुख हुआ है, इसीलिए उसने समझाने वाले अंदाज में कहा और आगे बढ़ गया। जबकि सवेरा को लग रहा था कि ये बातें जानकर मुकद्दम गुस्से में हुरिया के साथ कुछ उल्टा सीधा करेगा तो ये सिर्फ उसकी सोच ही रहेगी, क्योंकि ये बात उसके लिए कोई नई नहीं थी। क्या मुझे वहां जाना चाहिए? हुरिया ने खुद से सवाल किया। नहीं नहीं, पता नहीं मुकद्दम सही मेरे साथ क्या करने का इरादा रखते हैं, वो सोचते हुए वापस बैठ गई। लेकिन अगर मैं ना गई तो वो फिर से उठकर खड़ी हो गई। उसे आगे कुआं पीछे खाई नजर आ रही थी, दोनों ही तरफ से अपना नुकसान, लेकिन बाद में अपना नुकसान करवाने से बेहतर था कि पहले सब कुछ ठीक कर दे। लेकिन अगर मुकद्दम साईं ने कुछ ऐसा वैसा किया तो? हाँ तो क्या हुआ? वो मेरे शोहर है, वो खुद को जवाब देती फिर उठकर खड़ी हो गई। लेकिन अभी मेरी रुख्सती तो नहीं हुई ना? लेकिन निकाह तो हो गया है, कभी उसका दिल हाँ और कभी ना कर रहा था, लेकिन اگر مقدم سائیں خود یہاں آگے تو پھر تیرا بیڑا غرق ہوگا ہوریا. مجھے مقدم سائیں کو غصہ بالکل نہیں دلانا چاہیے, مجھے جانا چاہیے ان کے کمرے میں. خود سے فیصلہ کرتے ہوئے اٹھی تو اس کے کمرے کا دروازہ بجا. وہ خود ہاں نہ سی کیفیت میں اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی, لیکن سامنے دیکھتے ہی اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا سائیں, ملک یہاں آیا تھا, آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کردم کو ملک کے بارے میں سوچ کر یہ غصہ آنے لگا. کردم سائیں اپنا غصہ کنٹرول کریں, آج کی تاریخ میں اس شخص کے لیے یہی شکست کافی ہے کہ اسے اس کی بیٹی کے نکاح میں شامل نہیں کیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے حریا کو کبھی اس کی اولاد نہیں مانا, کبھی اس سے ملنے نہیں دیا, لیکن سچ یہ بدل تو نہیں سکتا کہ حریا اس کا خون ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے دادا سائیں کہ حریا صرف اس کا ہی نہیں بلکہ پھوپھو سائیں کا بھی خون ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم حریا کی زندگی اس شخص کے حوالے کبھی نہیں کریں گے. حریا اس گھر کی بیٹی ہے. دادا سائیں جانتے تھے کہ کردم شاہ کے سامنے ملک کا ذکر بھی غلط ہے, اس شخص کے نام پر وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا. آج انہوں نے کردم کو یہاں دھڑکن کے بارے میں پوچھنے کے لیے بلایا تھا, لیکن کسی نوکر نے یہاں آتے ہوئے اسے یہ بتا دیا کہ ملک حویلی آیا تھا, جس کی وجہ سے وہ بہت غصے میں تھا. ملک کے سامنے تو وہ کہہ آئے تھے کہ وہ جیت گئے ہیں, لیکن یہ بھی بات سچ تھی کہ آج ملک کو دیکھ کر ان کے پرانے سارے زخم تازہ ہو گئے تھے. کردم, ہم نے آپ کو یہاں کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا, اور آپ ہیں کہ دشمن کو لے کر بیٹھ گئے ہیں. اس آدمی کا ذکر کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی خوشی آپ کے ساتھ منائیں. کردم شاہ جانتا تھا کہ آج اس کے دادا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں, اسی لیے فی الحال وہ بھی ملک کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا. کہیں آپ نے کیوں بلایا ہے, وہ تھوڑا نارمل انداز میں پوچھنے لگا. ہم نے یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ تمہیں دھڑکن پسند تو ہے, میرا مطلب ہے کہیں تائشہ کے لیے تمہارے دل میں جذبات تو نہیں. اس دن تائشہ کا نام ہٹا کر جب ہم نے دھڑکن کا نام لیا تو تمہارا چہرہ بے تاثر تھا, ہمیں تمہارے چہرے پر کہیں پر بھی اس کے لیے محبت نظر نہیں آئی. ہم جانتے ہیں کہ جذبات میں بہہ کر ہم نے تائشہ کے ساتھ ناانصافی کی ہے, لیکن بہت جلد ہم اسے پیار سے بٹھا کر سمجھائیں گے تو وہ ہماری بات سمجھ جائے گی, بہت سمجھدار بچی ہے. لیکن ہمیں ڈر ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی نا, دادا سائیں نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا. دھڑکن کا معصوم چہرہ ایک بار پھر سے نظروں کے سامنے لہرایا تھا. وہ جو نکاح کے بعد محبت پر یقین رکھتا تھا, آج دل سے اس بات پر ایمان بھی لے آیا تھا. آپ کا ڈر بالکل بے مقصد ہے دادا سائیں, آپ کی پسند میری پسند. وہ لڑکی جو شادی سے پہلے ہی اپنے آپ کو اس کی پسند میں ڈال چکی تھی, وہ اسے کیسے پسند نہ آتی؟ اور کوئی سوال؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو دادا سائیں نے نامے گردن ہلائی. جاؤ آرام کرو, کل شادی ہے تمہاری, دادا سائیں نے خوشی سے کہا. یہ کیا کہہ رہی ہے تو تائشہ, تم لوگ چودھری کے پاس کیوں گئی تھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر اس بارے میں کردم اور مقدم کو پتہ چل گیا تو؟ ایسا کیسا کر سکتی ہے تو؟ رضوانہ تو غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی. مجھے سویرا دیدا نے جو بولا وہ میں نے کر دیا, اماں سے غلطی ہو گئی مجھ سے. میں نے نانا سائیں کے کمرے سے زمین کے اوریجنل پیپر چودھری کو دے دیے, لیکن میں نے سویرا دیدا کے کہنے پر ایسا کیا. انہوں نے کہا کہ چودھری ہماری مدد کرے گا تو کردم سائیں کا اس دھڑکن سے نکاح رک جائے گا, اور اگر نکاح رک گیا تو ان کی شادی مجھ سے ہو جائے گی. تیرا دماغ خراب ہو گیا تھا, یہ تو نے کیا کر دیا؟ اب کیا ہوگا, آج نہیں تو کل کے بعد کردم سائیں کو پتہ چل جائے گی, پھر وہ کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا. اور اب تو بالکل بھی نہیں, ہمارے خاندان میں بس مرد ایک ہی شادی کرتا ہے, اور کردم شاہ کا نکاح ہو چکا ہے. اس بات کو قبول کرو, وہ اب تجھے کبھی نہیں اپنائے گا. بھول جاؤ اسے اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچو. تجھے اندازہ بھی ہے جو غلطی تو نے کی ہے وہ کیا رنگ لائے گی, اور اس زمین پر بچیوں کا سکول نہیں بنے گا. اگر اوریجنل پیپر چودھری کے پاس چلے گئے ہیں تو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی ہوگی تائشہ. لیکن میں نے کچھ نہیں کیا, جو بھی کیا سویرا دیدا نے کیا, تائشہ نے اماں کو سمجھاتے ہوئے کہا. لیکن تیری اس بات کو کون قبول کرے گا کہ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے کہنے پر کیا؟ کیا تو اپنی عقل نہیں رکھتی تھی؟ رضوانہ کو پریشانی کھائی جا رہی تھی, جبکہ تائشہ کو اب اس بات کی فکر تھی کہ اگر کردم کو یہ پتا چل گیا کہ وہ اوریجنل پیپر چودھری تک پہنچانے میں تائشہ کا ہاتھ ہے تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا, پیار تو بہت دور کی بات ہے. اپنے سامنے مقدم شاہ کو کھڑا دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے, جبکہ وہ اس کے کمرے کے اندر آیا اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا. تمہیں کیا کہا تھا میں نے؟ ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, وہ آنکھوں میں سختی لیے بول رہا تھا. उसकी आंखों की सख्ती देखकर हुरिया घबरा कर पीछे हटी। कसम से मुकद्दम साईं में आ रही थी। वो उससे डरती हुई इतनी जल्दी में बोली थी कि मुकद्दम शाह के लबों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे वो बड़ी सफाई से छुपा गया। अच्छा, मतलब आशिक को तड़पा तड़पा के आने का इरादा था, लेकिन तुम्हारा आशिक ना सबर के मामले में बहुत कमजोर है, इसीलिए तुम्हारे आने से पहले हाजिर हो गया। वो उसे खींच कर अपनी बाहों में भर चुका था। मुकद्दम से फिलहाल वो इस तरह की उम्मीद नहीं रखती थी, इसीलिए उसके बाहों में भोकला कर रह गई। ज्वेलरी और मेकअप वो साफ कर चुकी थी, लेकिन मेहंदी का पीला जोड़ा अभी उसके बदन पर मौजूद था। बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसके नाजुक से सरापे से उड़ती ओपटन और मेहंदी की खुशबू से बेकाबू कर रही थी। ऊपर से निकाह का जायज रिश्ता और एहसास मलकियत उसे बहुत कुछ करने पर मजबूर कर रहा था। वो बिना उसकी हालत की परवाह किए उसके लबों पर चुका और इस इसहकाक से अपनी मोहब्बत की पहली मोहर लगाई। उसकी इस बेसाख्ता जुरत पर हुरिया घबरा कर पीछे हटी। हुरिया ने उससे दूर उठना चाहा, लेकिन ना तो मुकद्दम शाह की गिरफ्त इतनी ढीली थी और ना ही हुरिया में इतनी जान कि वो उसके हसार से निकल पाती। हुरिया जितना उससे दूर जाने की कोशिश करती, मुकद्दम उसे कमर से पकड़कर उतना ही उससे अपने नजदीक कर चुका था। वो नाजुक सी जान बहुत मुश्किल में पड़ चुकी थी। उसके लबों को आजाद छोड़ता वो निगाहों में खुमार लिए उसके हसीन सरापे को उठाए बेड पर आया। हुरिया को लेटा कर खुद बिल्कुल उसके साथ लेटता हुआ उसके दोनों हाथ थामकर अपने लबों से छूने लगा। अब तो कोई पाबंदी नहीं है ना, उसके दोनों हाथों को कैद करता मदहोश लहजे में बोला। अब हो गया निकाह। वो उसकी थोड़ी को अपने लबों से छूता उसकी सराही दार गर्दन की तरफ आया और अपने दहकते हुए लबों को सिराब करने लगा। नहीं, मुकद्दम ने उसका दुपट्टा उसके बदन से अलग किया। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता हुरिया उसे थाम चुकी थी। मुकद्दम शाह ने आंखों में गुस्से के शरारे लिए उसके चेहरे की तरफ देखा। इस वक्त तुम्हारी मजाकते बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम्हारे करीब आने की शर्त तुमने निकाह रखा था जो पूरी हो चुकी है, अब तुम मुझे रोकने का हक नहीं रखती हो, एक बार फिर से उसके लबों पर झुकता सख्त लहजे में बोला। मुकद्दम शाह, निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। लबों को आजादी मिलते ही हुरिया बेबसी से बोली। हुरिया के दिल की धड़कन मुकद्दम के सीने में धड़कता उसका दिल महसूस कर रहा था। कल तक सब्र कर लें, हुरिया ने उसके बाहों में कैद बेबसी से कहा था। अगर मेरा जवाब इनकार हो तो? शायद मुकद्दम उससे ज्यादा बेबस था। आंसू खामोशी से उसकी आंखों से निकलकर तकिए में जज्ब हो चुका था। मुकद्दम शाह की नजरों से वो आंसू भी छुपा ना रहा, वो उसके एक एक जज्बात से वाकिफ था। मुकद्दम ने सख्ती से उसके बाल अपने मजबूत मुट्ठी में पकड़े और उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया। अगर तुमने कल मुझे ये नखरे दिखाए तो मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा, वो इतनी सख्ती से बोला था कि हुरिया एक लफ्ज भी अदा नहीं कर पाई। मुकद्दम ने उसे फेंकने वाले अंदाज में खुद से दूर किया था। नजरें साफ उससे नाराजगी का इजहार कर रही थी, लेकिन हुरिया में ना तो उसे रोकने की हिम्मत थी और ना ही अपनी तरबीब को शर्मिंदा करने का हौसला। मैं कल आपको मना लूंगी मुकद्दम साई। उसके जाने के बाद हुरिया खामोशी से उठी और दरवाजा बंद किया। उसे यकीन था कि वो उसे मना लेगी, लेकिन मुकद्दम का गुस्से में जाना अच्छा ना लगा था। आज उनकी रुख्सती थी। करदम की कल वाली हरकत के बाद धड़कन इस हद तक डरी हुई थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उस वक्त भी करदम उसे नजरों के हसार में लिए उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, जबकि धड़कन उसकी नजरों से कंफ्यूज हो रही थी। वो हर थोड़ी देर में निगाहें उठाकर करदम को देखती और हर बार उसे खुद को देखता पाकर निगाहें चुका लेती। न जाने उसके दिल में क्या चल रहा था, जबकि वो उसे खुद देखते पाकर मुस्कुरा रहा था। अपनी शादी पर भी करदम बेचारा सब कुछ अकेले संभाल रहा था। मुकद्दम न जाने कहाँ था। सुबह उसे कहकर किया था कि थोड़ी देर में वापिस आ जाऊंगा, लेकिन वो गया कहाँ ये सोच सोच कर करदम परेशान हो चुका था। अभी थोड़ी देर पहले ही दुल्हनों को लाकर बिठाया गया। न जाने मुकद्दम कहाँ था। कल रात के बाद तो वो हुरिया को कहीं नजर न आया, शायद वो उससे बहुत गुस्सा था। हाँ, ये सच था कि हुरिया को निकाह के बाद उसके करीब आने में कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी कल रात मुकद्दम के इसके करीब आने पर हुरिया ने उसे खुद से दूर कर दिया। ठीक है, हुरिया उसकी बीवी थी, लेकिन अभी तक उसकी रुख्सती नहीं हुई थी। उसे इज्जत के साथ मुकद्दम के कमरे तक रुख्सत नहीं किया गया था। वो किससे जाती उसके करीब? मुकद्दम शाह यही समझ रहा था कि वो उसके जज्बात की कदर नहीं करती। हुरिया को उसका एहसास नहीं है, लेकिन मुकद्दम जिस तरह रात गुस्से से उसके कमरे से गया था वो बहुत डरी हुई थी। न जाने वो उसके साथ क्या सलूक करे। दिमाग खराब हो गया तायशा, अगर ये बात तुमने उसे बता दी तो वो क्या करेगा? तायशा ने भी सवेरा को आकर कहा था कि वो करदम को ये बात बता देगी कि वो फाइल चौधरी तक इन दोनों ने पहुंचाई है। नहीं सवेरा दीदा, मुझे ये बात करदम साई को बतानी होगी कि वो फाइल चौधरी तक पहुंचाने वाली मैं हूँ, नहीं तो वो बाद में मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। और अभी माफ कर देगा? नहीं ना, वो अपनी शादी वाले दिन ही तुम्हें शूट कर देगा। थोड़ा सब्र कर लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खास प्लानिंग कर रखी है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम धड़कन को डरा नहीं पाओगी, इसीलिए इस बार जो मैंने प्लानिंग की है उसे करदम कभी धड़कन के नजदीक नहीं जा पाएगा। ऐसा क्या किया है आपने? अब तायशा को सवेरा पर बिल्कुल भी यकीन ना था। तायशा और सवेरा की सारी प्लानिंग फेल हुई थी, करदम और धड़कन का निकाह हो गया था, तो अब इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखना नामुमकिन था। तायशा ये बात समझ रही थी, लेकिन सवेरा के दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था। तुम देखती जाओ तायशा, तुमने तो मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। शातराना अंदाज में मुस्कुराती सवेरा आगे बढ़ चुकी थी, जबकि तायशा को समझ नहीं आ रहा था कि सवेरा ने क्या सोचा है। रुखसती का वक्त हो चुका था, लेकिन न जाने मुकदम का था। दादा साई 2-3 बार उसे फोन कर चुके थे, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिलता कि उसका फोन बंद है। अब दादा साई को परेशानी होने लगी थी। आखिर मुकदम गया तो गया कहाँ? मैं डेरे पर चक्कर लगा के आऊं? वो 2-3 लोगों को डेरे पर भेज चुके थे, लेकिन मुकदम का कुछ पता ना चला। अब करदम दादा साई की परेशानी देखते हुए बोला था, नहीं करदम, तुम कहीं नहीं जा सकते, रुखसती का वक्त होने वाला है, बच्चियां इंतजार कर रही हैं, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? करदम ने पूछा। इस तरह बगैर दूल्हे के दुल्हन को रुखसत तो नहीं कर सकते ना, पहले धड़कन की रुखसती करते हैं, फिर हुरिया के बारे में सोचते हैं, दादा साई ने परेशानी से कहा। मुकदम इतना गैर जिम्मेदार तो कभी ना था। लोगों के बीच में बातें शुरू हो चुकी थी कि मुकदम शादी से गायब है, लेकिन वो कहाँ गया है कोई नहीं जानता था। मुकदम साई, आप कहाँ चले गए हैं? वो मुझसे नाराज होकर तो नहीं चले गए? हुरिया को अपने ही अंदेशे खाए जा रहे थे। उसे बार बार मुकदम का गुस्से से भरा चेहरा याद आता। नहीं मुकदम साई, आप इस तरह से नहीं कर सकते, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसकी सजा इस तरह से दी जाए। हुरिया के हाथ पैर कांपने लगे। धड़कन को अकेले रुखसत करते हुए बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि धड़कन की रुखसती शुरू होती मुकदम पहुंच आया। कहाँ थे तुम मुकदम, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, इतनी गैर जिम्मेदारी, दादा साई ने गुस्से से कहा। दादा साई, जमीन के पेपर्स किसी ने हवेली से चोरी करके चौधरी को पहुंचा दिए थे, बस मैं वही पेपर्स लेने गया था। मेरे दादा साई का ख्वाब पूरा ना हो ऐसे मैं होने नहीं दूंगा। मुकदम ने अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर्स की तरफ इशारा किया, जिसे देखते ही सवेरा और तायशा के रोंगटे खड़े हो चुके थे। ये पेपर्स हमारे रूम में थे, वहां से किसने निकाले? दादा सही ने परेशानी से पूछा। वो तो पता चल ही जाएगा, परेशान मत हो, उसने तायशा को सख्त नजरों से घूरते हुए दादा सही को जवाब दिया। अब चले ना, मेरी दुल्हन कब से मेरा इंतजार कर रही है, मुकदम ने मुस्कुराते हुए कहा, तो दादा सही ने उसके कपड़ों की तरफ इशारा किया। इस हुलिये में दुल्हन नहीं मिलेगी क्या? मुकदम ने मुस्कुराते हुए करदम की तरफ देखा। बिल्कुल नहीं, अगर मेरी बहन चाहिए तो अपना हुलिया दुरुस्त करो, करदम ने रोब झाड़ते हुए कहा, तो मुकदम मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन एक सख्त नजर तायशा को डालना ना भूला। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटा, तुमने तायशा को करदम की नजरों में गिरने से बचा लिया। फूफा साई, आपके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन तायशा को कहें कि बाज आ जाए, इन सब हरकतों का कोई फायदा नहीं, करदम का निकाह हो चुका है, अल्लाह ने उसके नसीब में भी कुछ और लिखा होगा, उसे कहें कि इस तरह से नाशुक्री करके अपना नसीब ना बिगाड़े। मुकदम ने फूफा साई से नर्म लहजे में बात की थी, लेकिन तायशा पर उसे अब भी बहुत गुस्सा था, जो करदम के लिए अपने नाना का ख्वाब इस तरह से किसी के हवाले कर आई थी।